लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वयं सेवकों की जयंती समारोह पर पोप फ्रांसिस का उपदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में स्वयं सेवकों की जयंती के अवसर पर रविवार 9 मार्च को दुनिया भर से करीब 30,000 तीर्थयात्रियों ने समारोह ख्रिस्त्याग में भाग लिया, जिसका संचालन समग्र मानव विकास के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी येसु समाजी ने की। पोप फ्रांसिस के उपदेश को कार्डिनल चर्नी ने प्रस्तुत किया, जिसमें वे स्वयं सेवकों से कहते हैं, पीड़ितों, कैदियों, युवाओं और वृद्ध लोगों के प्रति आपका समर्पण पूरे समाज में आशा जगाता है। 40 अकाल के पहले रविवार के धर्म विधिक पाठों पर आधारित पोप के चिंतन को प्रस्तुत करते हुए कार्डिनल चर्नी ने कहा, आत्मा येसु को निर्जन प्रदेश ले चला। हर साल हमारी 40 की यात्रा वहीं से प्रभु का अनुसरण करके और उस अनुभव को महसूस करके शुरू होती है, जिससे उन्होंने हमारी भलाई के लिए बदल दिया। जब येसु ने निर्जन प्रदेश में प्रवेश किया तो एक निर्णायक परिवर्तन हुआ। मौन का स्थान सुनने का स्थान बन गया। संत पापा ने कहा, निर्जन प्रदेश में हमारी सुनने की क्षमता की जांच होती है, क्योंकि दो पूरी तरह से अलग आवाजों के बीच चुनाव करना होता है। इस संबंध में सुसमाचार हमें बतलाता है कि येसु की यात्रा सुनने और आज्ञाकारिता के कार्य से शुरू हुई। पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति उन्हें उस स्थान पर ले जाती है जहां ना तो जमीन से कुछ फसल उगता और ना ही आसमान से कुछ बरसता है। निर्जन प्रदेश में हम भौतिक और आध्यात्मिक गरीबी का अनुभव करते हैं और हमें रोटी एवं ईश्वर के वचन की आवश्यकता होती है, और येसु एक सच्चे मानव के रूप में उस भूख को महसूस करते हैं। 40 दिनों तक वे एक ऐसे शब्द के द्वारा परीक्षा में पड़े जो पवित्र आत्मा से नहीं बल्कि दुष्ट शैतान से आया था। 40 दिनों के उपवास की शुरुआत करते हुए हमें इस सच्चाई पर चिंतन करें कि हम भी परीक्षा में पड़ते हैं, फिर भी अकेले नहीं होते। निर्जन प्रदेश में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए येसु हमारे साथ हैं। ईश्वर के पुत्र ने मनुष्य को केवल बुराई से लड़ने का उदाहरण नहीं दिया, बल्कि हमें इससे भी बड़ी चीज दिए हैं, हमलों का विरोध करने और अपनी यात्रा पर दृढ़ रहने की शक्ति। तो आइए हम प्रभु के प्रलोभन और अपने स्वयं के प्रलोभन के तीन पहलुओं पर चिंतन करें। प्रलोभन की शुरुआत या कैसे घटित होती है और इसका क्या परिणाम होता है, इस तरह हम अपने मन परिवर्तन की यात्रा के लिए प्रेरणा पाएंगे। पहला, प्रलोभन की शुरुआत। येसु का प्रलोभन जानबूझकर था। प्रभु अपनी इच्छा शक्ति दिखाने के लिए निर्जन प्रदेश नहीं जाते, बल्कि पिता की आत्मा के प्रति पुत्रवत खुलेपन के कारण जाते हैं, जिनके मार्गदर्शन को वे तत्परता और स्वतंत्रता से स्वीकार करते हैं। जबकि दूसरी ओर हमारा प्रलोभन जानबूझकर नहीं है। बुराई हमारी स्वतंत्रता से पहले है, जो हमारे अंदर से एक आंतरिक छाया और एक निरंतर खतरे की तरह हमला करती है। जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में ना डाल, तो हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने पहले ही येसु अपने देहधारी शब्द के माध्यम से उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर दे दिया है। जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु हमारे करीब हैं और हमारी परवाह करते हैं, खासकर परीक्षा और अनिश्चितता के समय में, जब प्रलोभन देने वाला अपनी आवाज बुलंद करता है। वह झूठ का पिता है, वह विकृत और दुराग्राही है, क्योंकि वह ईश्वर के वचन को बिना समझे जानता है, जैसा कि उसने अदन की वाटिका में आदम के दिनों में किया था। वैसा ही वह अब निर्जन प्रदेश में नए आदम यीशु के साथ भी करता है। दूसरा, प्रलोभन किस तरह आता है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा किस तरह ली जाती है। उनकी परीक्षा ईश्वर अपने पिता के साथ संबंध के माध्यम से ली जाती है। शैतान अलग करता है, वह बांटता है, जबकि यीशु ईश्वर और मनुष्य को जोड़ते हैं, मध्यस्थ बनते हैं। अपनी विकृति में शैतान उस बंधन को नष्ट करना चाहता है और यीशु का अपनी स्थिति का फायदा उठाने के लिए बहकाता है। वह कहता है, यदि तो ईश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे कि यह रोटी बन जाए, और फिर यदि तो ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को मंदिर के शिखर से नीचे गिरा दे। इन प्रलोभनों के जवाब में ईश्वर के पुत्र यीशु आत्मा के संचालन में पिता के साथ अपने पुत्रवत संबंध को जीने का तरीका चुनते हैं। वे ईश्वर के साथ अपने अनूठे और अनन्य संबंध को बनाए रखते हैं, जिनके वे इकलौते बेटे हैं। एक ऐसा संबंध जो किसी को बिना छोड़े सभी को गले लगाता है। हालांकि पिता के साथ यीशु के संबंध को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, ना ही घमंड किया जा सकता है कि सफलता हासिल की जाए और अनुयायियों को आकर्षित किया जाए, जबकि यह एक उपहार है जिससे वे हमारे उद्धार के लिए दुनिया के साथ साझा करते हैं। पोप कहते हैं कि हम भी ईश्वर के साथ हमारे संबंध में परीक्षा में पड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है कि ईश्वर वास्तव में हमारे पिता नहीं हैं, उन्होंने हमें सचमुच त्याग दिया है। शैतान हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि भूखों के लिए रोटी नहीं है, पत्थरों से तो बिल्कुल नहीं। जब हम गिर रहे होते हैं तो स्वर्गदूत हमारी मदद के लिए नहीं आते, और सबसे बड़ी बात कि दुनिया दुष्ट शक्तियों के हाथों में है, जो अपने अहंकारी योजनाओं और युद्ध की क्रूरता से राष्ट्रों को कुचल देती हैं। लेकिन जब शैतान हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि प्रभु हमसे दूर हैं और हमें निराशा के गर्त में ढकेलता है, तब ईश्वर हमारे और करीब आ जाते हैं, दुनिया के उद्धार के लिए अपना जीवन देते हैं। तीसरा, इन प्रलोभनों का परिणाम क्या होता है। यीशु ईश्वर के अभिषिक्त बुराई को परास्त करते हैं, वे शैतान को भगा देते जो एक और अवसर की प्रतीक्षा में उन्हें लुभाने के लिए वापस आएगा। इसलिए सुसमाचार हमें बतलाता है, और हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि गोलगोथा पर यीशु को फिर लुभाया जाता है। यदि तो ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ। निर्जन प्रदेश में प्रलोभनकर्ता पराजित हो गया था, लेकिन ख्रिस्त की जीत अभी भी निश्चित नहीं हुई थी। वह उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के पास का रहस्य में निश्चित होगी। जब हम अपने विश्वास के इस मुख्य रहस्य का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम महसूस करें कि हमारी परीक्षा का परिणाम अलग होता है। प्रलोभन का सामना करते हुए हम कभी कभी गिर जाते हैं। हम सभी पापी हैं, फिर भी हमारी हार तय नहीं हुई है, क्योंकि हमारे पतन के बाद ईश्वर हमें अपने असीम प्रेम और क्षमाशीलता से ऊपर उठाते हैं। हमारी परीक्षा विफलता में समाप्त नहीं होती, क्योंकि ख्रिस्त में हम बुराई से मुक्त हो जाते हैं। जब हम उनके साथ निर्जन प्रदेश में यात्रा करते हैं, तो हम एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जिस पर पहले कभी यात्रा नहीं की। यीशु स्वयं हमारे सामने मुक्ति और उद्धार का एक नया मार्ग खोलते हैं। विश्वास में प्रभु का अनुसरण करके हम भटकने वाले से तीर्थयात्री बन जाते हैं। अंत में संत पापा स्वयं सेवकों और विश्वासों को संबोधित करते हुए कहते हैं,
कारी सोरेले, कारी फ्रातेली।
प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको इसी तरह अपनी चालीसा यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और चूंकि इस यात्रा में हमें भली इच्छा बनाए रखने की आवश्यकता है, जिससे पौत्र आत्मा हम में हमेशा जीवित रखते हैं, इसलिए मुझे उन सभी स्वयंसेवकों का अभिवादन करते हुए खुशी हो रही है जो आज अपनी जयंती तीर्थ यात्रा के लिए रोम में है। प्रिय मित्रों, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप यीशु के उदाहरण पर चलते हुए अपने पड़ोसियों की सेवा बिना किसी संकोच के करते हैं। सड़कों पर और घरों में बीमारों, पीड़ितों और कैदियों के साथ, युवाओं और बुजुर्गों के साथ आपकी उदारता और प्रतिबद्धता हमारे पूरे समाज को आशा प्रदान करती है। आप गरीबी और अकेलेपन के निर्जन प्रदेश में उन सभी छोटे छोटे चिन्हों के माध्यम से उस बगीचे में एक नई मानवता को खिलने में मदद कर रहे हैं जो ईश्वर का सपना है, हमेशा, हर जगह, हम सभी के लिए।
E continua a sognare per tutti noi.
भाइयों को जो किया मेरे लिए किया, प्रभु राज के हकदार हो, प्रभु राज में आओ।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने एक शांतिपूर्ण रात बिताई और अब वे आराम कर रहे हैं। यह वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा आज सोमवार 10 मार्च के अपडेट में रिपोर्ट किया गया था। चालीसा के पहले रविवार को संत पापा ने पवित्र मिसा में भाग लिया और जमेली अस्पताल से ऑनलाइन रोमन कुरिया के आध्यात्मिक साधना में भाग लिया, जो कल दोपहर वाटिकन के संत पापा पॉल सस्तम हॉल में शुरू हुआ और जिसका नेतृत्व रोमन कुरिया के उपदेशक फादर रोबर्टो पासोलिनी ने किया। इस बीच संत पापा का श्वसन थेरेपी और फिजियोथेरेपी जारी है और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित आहार जारी है। उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, जिसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति जटिल बनी हुई है और डॉक्टरों को सावधानी से पूर्वानुमान सुरक्षित रखने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज शाम को एक नया मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। रोम के जेमेली अस्पताल में द्विपक्षीय निमोनिया का इलाज कराने के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने रविवार या देवदूत प्रार्थना के लिए तैयार पाठ जारी किया, जिसे वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया। उन्होंने ईस्टर की ओर कलीसिया की चालीसा यात्रा को याद किया। क्रिश्चियों को इसे शुद्धिकरण और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय, विश्वास, आशा और दान में वृद्धि का मार्ग बनाने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा कि वे विशेष रूप से उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो बीमार लोगों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी देखभाल में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु की उपस्थिति का संकेत देते हैं। यहाँ लंबे समय तक अस्पताल में रहने के दौरान मैंने भी सावधानी पूर्वक की गई सेवा और देखभाल की कोमलता का अनुभव किया, विशेष रूप से डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों से, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले सभी लोगों के साथ कोमलता के चमत्कार का आह्वान किया, ताकि वे दर्द की रात में थोड़ी रोशनी महसूस कर सकें। इसके बाद संत पापा ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे रोमन कुरिया के सदस्यों के साथ उनके वार्षिक आध्यात्मिक साधना में आध्यात्मिक रूप से शामिल होना चाहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने रोम में 9 और 10 मार्च को आयोजित विश्व स्वयंसेवक दिवस की जयंती को याद किया। उन्होंने कहा, हमारे समाज में जो बाजार के तर्क के बहुत अधिक गुलाम है, जहां हर चीज हित और लाभ की तलाश की कसौटी पर खरा उतरने की जोखिम उठाता है, स्वयं सेवा भविष्यवाणी और आशा का संकेत है, क्योंकि यह निशुल्क सेवा एकजुटता और सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की सेवा की प्रधानता का गवाह है। उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जो अपने स्थानीय समुदायों के लिए भले दिल से स्वयं सेवक बनते हैं। उन्होंने कहा, उनकी देखभाल दूसरों में आशा को फिर से जगाने में मदद कर सकती है। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने शहीद यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, म्यांमार, सूडान और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए शांति के उपहार हेतु प्रार्थना की। उन्होंने सीरिया में हाल ही में हुई हिंसा के लिए भी चिंता व्यक्त की और समाज के सभी जातीय और धार्मिक घटकों, विशेष रूप से नागरिकों के लिए पूर्ण सम्मान का आह्वान किया। उधर सोमवार 10 मार्च से संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए शाम की रोजरी प्रार्थना रोमन कुरिया के आध्यात्मिक साधना के साथ मेल खाने के लिए संत पापा पॉल सिस्टम हॉल में शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। रोम के विश्वासीगण और रोम शहर में आने वाले तीर्थयात्री जो संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वे अभी भी संत पापा पॉल सिस्टम हॉल में रोमन कुरिया के सदस्यों के साथ वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लेने के लिए संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में इकट्ठा हो सकते हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने रविवार को घोषणा की कि रोजरी शाम 6 बजे के आसपास होगी, जो 10 से 14 मार्च को होने वाले वार्षिक आध्यात्मिक साधना के लिए संध्या प्रार्थना और मनन ध्यान के समापन के बाद होगी। सोमवार से रोजरी माला का प्रसारण संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण और वाटिकन न्यूज के सभी चैनलों पर किया जाएगा और रोमन कुरिया के उपदेशक फादर रोबर्टो पासोलिनी OFM कैप ने रोमन कुरिया के 2025 आध्यात्मिक साधना का पहला उपदेश रविवार 9 मार्च शाम 5 बजे वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम हॉल में प्रस्तुत किया, जिसका विषय था अंत ही शुरुआत होगी, जिसका सारांश इस प्रकार है। मसीह के पुनरुत्थान पर आधारित कलीसिया के विश्वास ने हमेशा दुनिया को मृत्यु के बाद जीवन की आशा दी है। हालांकि समय के साथ यह वादा फीका पड़ गया है और आज इसे इतना अधिक चुनौती नहीं दी जाती जितनी कि इसे अनदेखा किया जाता है। इस उदासीनता के सामने विश्वासियों को अनंत जीवन के मूल्य और सुंदरता को फिर से खोजने तथा इसके वास्तविक अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए बुलाया जाता है। यह कार्य जुबली के इस पवित्र वर्ष में और संत पापा द्वारा अनुभव की जा रही गहरी पीड़ा के दौरान और भी अधिक जरूरी है। अनंत काल केवल एक भविष्य का पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो यहाँ से शुरू होती है। जिस हद तक हम मसीह के साथ प्रेम और संगति में जीना सीखते हैं, आखिरकार हमारा भाग्य भय में नहीं बल्कि आशा में लिखा गया है। मृत्यु एक हार नहीं बल्कि वह क्षण है जब हम अंततः ईश्वर का चेहरा देखेंगे और पाएंगे कि अंत केवल शुरुआत थी। उधर सीरियाई मानवाधिकार वेधशाला द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी सीरिया में 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यह हिंसा कथित तौर पर पिछले गुरुवार को अपदस्थ राष्ट्रपति असद के समर्थकों के एक समूह द्वारा लताकिया शहर के पास सुरक्षा बलों पर किए गए हमले से शुरू हुई थी। यह वही इलाका है जहां अधिकांश पीड़ित मारे गए थे। इनमें अधिकांश अलावी नागरिक हैं। इस समूह में अपदस्थ राष्ट्रपति अल बशर असद भी शामिल हैं। पीड़ितों में कम से कम 13 बच्चे हैं। हताहतों और घायलों के अलावा हिंसा के कारण हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।